بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. جن لوگوں نے کفر کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے یہ دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو بڑا عذاب ہوگا. گزشتہ تین آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے ایمان والوں کی صفات کو اور ان کے انجام کو اور ان کی حالت کو بیان فرمایا تھا. ابھی پڑھی گئی اور ترجمہ کی گئی دو آیتوں میں کھلے طور پر اسلام کا انکار کر کے کافر بننے والوں کا انجام بتایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ ان کو جو جہنم سے خبردار کر رہے ہیں، ان کے انجام بد سے ان کو ڈرا رہے ہیں. آپ یہ کام انجام دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس قسم کے مضامین کے بیان کرنے سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ایک، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کے ایمان نہیں لانے سے جو تکلیف ہوتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خواہش میں کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں جو محنت اٹھاتے تھے، اور پھر اس محنت کو بظاہر بار آور نہ ہوتا ہوا دیکھ کر جو آپ ذہنی طور پر کڑھن میں مبتلا ہوتے تھے، اس پر تسلی حاصل ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا کہ آپ کا کام تو ان کو اپنا پیغام پہنچا دینا، ہماری بھیجی ہوئی وحی پہنچا دینا اور حق بات کا پہنچا دینا ہے، باقی راہ راست پر ان کو لے آنا، ان کو مسلمان بنا دینا، فرما بردار بنا دینا، صاحب ایمان کر دینا، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. رہ گئی بات جن کافروں سے آپ کو سابقہ ہے، جو مکہ کے کفار آپ سے کلام اور پیغام حق کو اور قرآن کو اور قرآنی وحی کو سن رہے ہیں، ان کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ایسے ہیں کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ایمان نہیں لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس صحیح بات پہنچی نہیں ہے، بلکہ ان کی ضد ہے، ان کا اناد ہے، ان کی سرکشی ہے کہ جانتے بوجھتے ماننا نہیں ہے ان کو، بس اس لیے نہیں مان رہے. انذرتہم ام لن تنذرہم سواء علیہم، ڈرائیں آپ ان کو یا نہیں ڈرائیں، دونوں صورتوں میں وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لانے والے. انجام کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اور وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ان کا انجام ہے کہ آئندہ بھی پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ دل پر مہر کر دی گئی ہے، کانوں پر مہر کر دی گئی. مہر کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد جس چیز پہ مہر کر دی جاتی ہے اس میں باہر سے پھر کوئی چیز ڈالی نہیں جاتی. خط لکھا گیا، خط کے اوپر اسٹیمپ لگا دیا گیا، اسٹیمپ لگنے کے بعد پھر کچھ اور اس کے اندر لکھا نہیں جاتا. کوئی باکس تیار ہوا، اس کے بعد اس کو سربا مہر کر دیے، اس کو باندھ دیا گیا پوری طرح، اس کی باکس کی جو مہر ہوتی ہے وہ لگا دی گئی، پھر اس کے بعد اس ڈبے میں، اس باکس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی جاتی. कंपनियों से पैक होकर के शीशे तैयार आते हैं, मशरूबात के भी माकूलात के भी। उनके ऊपर जब मोहर लग जाती है तो उनके अंदर भी कोई चीज़ फिर दोबारा से बाहर से डाली नहीं जाती। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, इन लोगों के दिलों पर भी अल्लाह ने मोहर कर दी है। अब इनके अंदर में जो कुफ्र भरा हुआ है वही कुफ्र इनके दिलों में भरा रहेगा, बाहर से फिर ईमान दाखिल होकर वो अपनी जगह इनके दिलों में बनाने से रहा। वाला समाईहिम, कानों के साथ भी यही किस्सा है, यानी ये समझेंगे नहीं सही बात को, वाला समाईहिम सुन के कबूल करेंगे नहीं सही बात को, वाला अबसारहिम गिशावा और सीधे रास्ते को देखेंगे नहीं आंखों पर पर्दा पड़ा होने की वजह से, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। तो एक मंच एक इस किस्म की आयत को उतारने का कि आप उनको डराएं या नहीं डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं और उनका अंजाम ये है, इससे आप अलैहिस्सलाम को एक तो तसल्ली का मजमून हासिल होता है, दूसरे उन कुफार को तंबीह मकसूद होती है। एक तो है कि आप अलैहिस्सलाम का उनको समझाना और उनको बताना कि देखो तुम्हारा ये अंजाम होने वाला है, एक कयामत तक बाकी रहने वाली और पढ़ी पढ़ाई जाने वाली आयतों के अंदर उनके अंजाम का अलल ऐलान इस तरह से जिक्र आ जाना। तो ये उनकी तंबीह के वास्ते है, ये उनकी सजा के तौर पर है। उसके बाद वाली आयतों के अंदर तर्जमा करते हुए हम देखेंगे कि हक ताला ने मुनाफिकों के औसाफ को बयान फरमाया है। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, कुछ लोग वो हैं जो जबान से कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए हैं, वो मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं। युखादिउन अल्लाह वल्लदीन आमनू, वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं अपने ख्याल में, वो ये समझ रहे हैं कि वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। वमा यखदउन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, हालांकि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, उनको इसकी खबर नहीं है। वमा यशउरून, उनको पता भी नहीं चल रहा कि धोखा वो किसको दे रहे हैं, खुद को या अल्लाह को और ईमान वालों को। इन दो आयतों के अंदर मुनाफिकीन के मुगालते को बयान किया गया। मुनाफिक कौन सा बंदा होता है जो जाहिर तो इस्लाम करता है, जाहिर तो अपने आप को मुसलमान करता है, लेकिन अंदर से वो काफिर होता है, अंदर से वो मुसलमान नहीं होता है, वैसा बंदा मुनाफिक है। ताला फरमा रहे हैं कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कहते तो हैं जबान से कि हाँ हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो हकीकत में वो ईमान वाले नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ईमान का ताल्लुक जबान के सिर्फ इकरार से नहीं है, सिर्फ इकरार से नहीं है, बल्कि दिल के अंदर भी उस चीज़ को सच्चा मानना और सच्चा जानना ज़रूरी है। और ये दिल की ये कैफियत इनको, यकीन की ये कैफियत इनको नसीब नहीं है, इस वास्ते कि ये यकीन करना नहीं चाहते, तो वमा हुम बिमुमिनीन, इसलिए फिर ये साहिब ईमान भी नहीं है। फिर जो बंदा मुनाफिक बनता है, वो मुनाफिक बन के क्या करना चाहता है? वो मुनाफिक बन के समझता है कि मैं होशियार हूं और बाकी सारे बेवकूफ हैं, मैं दो रुखी पॉलिसी खेल रहा हूं। दो रुखी पॉलिसी खेलने से क्या होगा कि मैं दोनों की नजर में, काफिरों की नजर में काफिर बना हुआ हूं, मुसलमानों की नजर में मुसलमान बना हुआ हूं, तो मैं इन लोगों को धोखा दे रहा हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस मुगलते में मत रहो, समझते तो तुम ये हो कि तुम अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हो। وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, तुम अल्लाह को ईमान वालों को नहीं खुद को धोखा दे रहे हो। इस दोरुखी पॉलिसी का जो नतीजा है उस नतीजे पे जरा गौर करो, फिर बात खुल जाएगी। وَمَا يَشْعُرُونَ, लेकिन इतने बेवकूफ हैं कि इनको अपनी बेवकूफी में ये फैसला भी ये सही से नहीं ले सक रहे, नहीं कर सक रहे कि धोखा किसका है इसके अंदर, नुकसान किसका है इसके अंदर। فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, इनके दिलों के अंदर मरज है, बीमारी है। فزادهم الله مرضا, अल्लाह ने उनके इस बीमारी को बड़ा डाला है और बढ़ा दिया। ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون, और इनको इनके झूठ बोलने की वजह से दर्दनाक अजाब होने वाला है। इनकी अंदरूनी हालत क्या है कि ये जो निफाक है ये इनके दिलों का रोग है। बीमारी क्या होती है? बदन के अंदर जिस्मानी जो बीमारी होती है वो बीमारी के अंदर अखलाते अरबा अपने तनासुब और एतदाल पे बाकी नहीं रहते। उनके अंदर कमी बेशी हो जाने की वजह से उसके हिसाब से बीमारी पैदा होती। कभी सफरा ज्यादा हो गया, कभी सौदा ज्यादा हो गया, कभी खून ज्यादा हो गया, कभी बलगम ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से फिर उसके हिसाब से बीमारियां पैदा हो रही। खून के बढ़ने से फुला बीमारी, खून के घटने से फुला बीमारी, सफरा के ज्यादा हो जाने से फुला बीमारी, सफरा के कम हो जाने से फुला बीमारी। तो जिस्मानी बीमारियों के अंदर क्या होता है कि जो अखलात हैं उन अखलात का एतदाल बाकी नहीं रहता है। निफाक भी रूहानी बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दिल की कैफियत अपने एतदाल में नहीं होती, जिसकी वजह से वो नफ्स के कमालात के हासिल करने में रुकावट बनती हैं और खलल अंदाज होती हैं। मुनाफिक बंदा, अब देखिए, दो रुखी पॉलिसी खेलने वाला, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है, उसके अंदर बुजदिली है, उसके अंदर हसद है, जिसके साथ वो दिल से नहीं है ना, उसकी तरक्की को दिल के उस देखकर उसे खुशी नहीं होगी। दोनों में, दोनों के साथ वो चल रहा है, लेकिन हकीकत में वो है किसी एक ही के साथ। जैसे जो मुनाफिक है वो असल में है काफिर, जाहिर कर रहा है मुसलमान, तो अब मुसलमानों की तरक्की देखकर उसकी खुशी होगी नहीं, तो दूसरों की तरक्की को, खुशी को देखकर खुश ना होना एक कमजोरी है। और अपना जो मौकफ है साफ तौर पर उसको जाहिर नहीं कर पाना, ये एक बुजदिली, ये एक कमजोरी है। और दसियों इसके अंदर बीमारियां होती हैं, कीना इसके जरिए से पैदा होता है। अब जैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचने की आरजू ऐसे लोगों की होती है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। अब किसी के नुकसान की आरजू और उम्मीद में रहना कीना है। जो नियामत दूसरे के पास है उसके छिन जाने की आरजू करते रहना हसद है। अपना जो मौकफ है साफ तौर से उसको जाहिर नहीं करना है, बुजदिली है। फी कुलूबिहिम मरज, ये निफाक नहीं है, निफाक तो एक नाम है, असल में यह है दिल का रोग। फजादहुमुल्लाहु मरज़, अल्लाह ने भी इनका ये रोग बढ़ा दिया है। ये अल्लाह ने इनका रोग बढ़ाया कैसे है, ये बीमारी इनकी बढ़ाई कैसे है, या इसी तरह बढ़ाई है कि अहले ईमान को तरक्की देते गए, एक जंग के बाद दूसरी जंग, एक गजबे के बाद दूसरा गजबा, वो फतह करते जा रहे हैं। दुनियावी एतबार से भी अल्लाह पाक उनको नवाज रहे हैं, दीनी एतबार से भी उनका दीन लोगों में और दुनिया में फैल रहा है, तो जाहिरी एतबार से भी, मादी एतबार से भी, और बातिनी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी हक ताला मुसलमानों को तरक्की देते चले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये हकीकत में तो मुसलमान है नहीं कि इन खुशी की चीजों से खुश हों, ये तो मुसलमानों के दुश्मन हैं। तो अब मुसलमानों की ये खुशी इन्हें पसंद कैसे आएगी, तो इनके हसद में इजाफा हो रहा, इनके कीने में इजाफा हो रहा। फजादहुमुल्लाहु मरज़ा, जैसे अल्लाह की तरफ से एक फतह मिली इनको तकलीफ हुई, ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा। जैसे अल्लाह की तरफ से फुलान जगह इस्लाम के फैलने के फैसले हुए और अल्लाह ने वहां के लोगों को हिदायत दी तो इनको तकलीफ हो गई, अरे वहां के लोग भी मुसलमान हो गए, वहां के लोग भी मुसलमान हो गए, तो इसके साथ इनकी कुड़न बढ़ती गई। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और इनको इनके झूठ बोलने की वजह से बड़ा दर्दनाक अजाब होने वाला है। यहां देखिए अजीब बात है, इनका असल जो जुर्म है वो है निफाक। हक ताला फरमा रहे हैं लहुम अजाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, निफाक करने की वजह से इनको दर्दनाक अजाब होने वाला है। ये अल्फाज नहीं है, यहां अल्फाज हैं कि झूठ बोलने की वजह से इन लोगों को दर्दनाक अजाब होने वाला है। इससे एक चीज तो ये समझ में आई कि निफाक झूठ है या झूठ का नतीजा है। दूसरे ये कि झूठ को ये मुनाफिक भी बुरा समझते थे, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस चीज को तुम बुरा समझ के अपने आप से उसको मंसूब नहीं कर रहे हो ना, खुद को बचाना चाह रहे हो, तुम्हारा जो काम है उसका नाम तो यही बनता है, कुफरू को छुपाए हुए हो और छुपाना जाहिर नहीं करते, इस्लाम को जाहिर कर रहे हो और हकीकत से उसको कबूल नहीं करते। तो तुम्हारा जो दिल है वो जबान का साथ नहीं देता, तुम्हारी जो जबान है वो दिल का साथ नहीं देती। झूठ में यही तो होता कि जो इत्तला है वो वाकये की साथ का साथ नहीं देती, खबर की का साथ नहीं देती, हकीकत में जो हुआ उस हकीकत का साथ नहीं देती इत्तला और खबर, इस वास्ते उसको झूठ बोलते हैं। तो तुम्हारा जो दिल कहता है, मानता है, जानता है, तुम जबान पे उसको नहीं लाते, जो जबान पे लाते हो दिल से उसको मानते नहीं हो, तो तुम्हारा दिलो जबान जब जमा नहीं हुए तो ये किज़्ब नहीं तो और क्या है? और तुम कहते हो कि हम बड़े सच्चे हैं। झूठ जिस चीज को कहते हैं तुम्हारे कामों में वो नुमाया है, तो तुमको असल जो सजा मिलेगी तुम्हारे झूठ बोलने की मिलेगी। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون, जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न मचाओ तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह वाला काम कर रहे हैं, हम तो नेक काम कर रहे हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून, गौर से सुनो, कान खोल के सुनो कि फसाद मचाने का काम यही कर रहे हैं, यही फसाद मचाने वाले हैं, इनको पता नहीं है। दुनिया के अंदर दो किस्म के बुराइयां हैं, जो अपने जाहिर और बातिन हर एतबार से फसाद का काम है, बुराई का काम है, डाका डाल रहे हैं, सारी दुनिया बोलती है बुरा काम है, इज्जतें लूट रही हैं, किसी लूटी जा रही हैं तो सारी दुनिया बोलती है बुरा काम है, चोरी कर रहे हैं तो सारी दुनिया बोलती है बुरा काम है, नाहक किसी को कत्ल कर रहे हैं सारी दुनिया बोलती है बुरा काम है। अखलाकी एतबार से पस्ती की उन हदूद में चले जाना जो जानवरों के अंदर होती हैं, बल्कि उनसे भी नीचे होती हैं। कहने को तो उनको भी दुनिया बुरा कहती है, लेकिन बुरा कहने वाले भी उसके अंदर मुब्तला होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि उसमें मुब्तला रहने की वजह से उसके नताइज सामने आने के बाद में अपने उस इब्तला को और अपने उस अमल को वो फसाद का नाम नहीं देते, अपने उसका और अपने अमल के नतीजे में जाहिर होने वाले उस नतीजे को फसाद का नतीजा नहीं समझते। अब ताला ये फरमा रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये मुनाफिक किस्म के, मुनाफिक मिजाज जो लोग होते हैं, जब इन लोगों के सामने हक परस्त लोग, इस हकीकत में इस्लाह का काम करने वाले लोग फहमाइश के जरिए उनको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम जो काम कर रहे हो इसे नुकसान हो रहा है, इससे फसाद फैल रहा है, इससे माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, वो लोग ये कहते हैं कालो इन्नमा नहनु मुस्लिहून, नहीं, बिगाड़ हम नहीं पैदा कर रहे, अला इन्नहु हुमुल मुफ्सिदून। लेकिन उनके सिर्फ ये बोल देने से वो बरी नहीं हो गए, उनके इस बोल देने से खराबी मिट नहीं गई, उनके सिर्फ ये कह देने से वाकईतन वो मुस्लिह नहीं बन गए, अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून, फसाद तो वही मचा रहे हैं। तो असल में जो है ना, जाहिरी एतबारात से पाबंदियां लगा के, कानून बना के, हुकूमतों के निजाम को, पूरे सिस्टम को चला के और लोगों को हर तरह से पाबंद करके दुनिया के अंदर कोशिशें होती हैं कि सलाह का निजाम फैलाया जाए। लेकिन इंसानी रूह की तामीर, अखलाको किरदार की दुरुस्ती, जिसको शरीयत की इस्तेलाह में तज़किया नफ्स बोलते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती है। तो क्या होता, जाहिरी तौर से ये जितने इंतजाम हो रहे हैं, हुकूमतें जितना इंतजाम कर रही होती हैं, इदारे जितना इंतजाम कर रहे होते हैं माशरे के अंदर सलाह को, नेकी को, खैर को फैलाने के, वो जाहिरी एतबार से सलाह की और नेकी की शक्ल होने के बावजूद सलाह और नेकी वाला नतीजा नहीं देती, फल नहीं देती। क्यों? इसलिए कि जिन जड़ों से फल पैदा होता है उन जड़ों को पानी नहीं मिलता है, और वो जड़ें होती हैं अखलाकी और किरदार की। मजहब और शरीयत और दीन इस्लाम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को हुकूमत बनाने पे नहीं डाला कि हुकूमतें बनाओ, कवानीन बनाओ, इस पे नहीं डाला। सबसे पहले उनको, सबसे पहले उनकी जो परवरिश, जो बोलेंगे इस्लामी जो परवरिश हुई है उनकी, इस्लामी जो तरबियत हुई है उनकी, वो अखलाको किरदार के लिहाज से हुई है। तो अव्वलिन चीज ये होती है तवज्जो करने के लिहाज से। फिर उसके बाद जब ये चीज समर जाती है, जब अखलाको किरदार के एतबार से इंसान इंसान बन जाता है, आदमी आदमी बन जाता है, उसके बाद में फिर कानून बनाना फायदा देता है, फिर निजाम का पाबंद करना फायदा देता है, पाबंदियां आयद करना फायदा देता है। वरना क्या होता है, अगर आदमी आदमियत की हुदूद में ना हो, इंसान इंसानियत की हुदूद में ना हो, जानवरों से भी पस्त तरीन अखलाको किरदार का हामिल हो, तो अगर वो कानून भी बनाएगा ना, तो फिर उस कानून के अंदर भी अपने ही मफादात की तरफ ले जाने वाली चीज होगी, सलाह की तरफ ले जाने वाली कोई चीज नहीं होगी। अपनी ख्वाहिश की तकमील का जरिया वो कानून को बनाएगा, वो जो करना चाहता है वो करने के लिए कानून बनाएगा, इसलिए नहीं कि नेकी फैले, इसलिए नहीं कि सलाह फैले। तो सबसे पहले फरमाया कि फी कुलूबिहिम मरज, उनके दिलों में रोग है, इस रोग को नहीं समझ रहे। फिर उनको बोलते देखो इस रोग को दूर करो, तो बोलते हैं कि नहीं हमारे अंदर रोग नहीं है और हम जो काम कर रहे हैं उससे कोई फितना फसाद नहीं हो रहा, हालांकि उन्हीं से फितना फसाद हो रहा है। और खुद को वो ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सलाह फैलाने वाले लोग हैं। हमेशा खास हमेशा भी और इस जमाने में भी बिलखसूस और कसरत के साथ में जोर शोर से ये काम हो रहा है कि हर गलत काम को एक अच्छा उन्वान, अच्छा टाइटल, अच्छा लेबल दे दो। ये बड़ी खतरनाक चीज है, निफाक में यही होता है। और आज पूरी दुनिया बातिल बातिल परस्त, तो बातिल है ही है, वो अपने सारी चीजों के अंदर इनकी इसकी कोशिश करते रहते हैं कि अपने मकासिद को, जो उनके अपने जाती अगराज पर मुश्तमिल होते हैं, उनके लिए जो कवानीन बने होते हैं, उन कवानीन को लोगों के फायदे के लिए बना के जाहिर करते हैं। औरतों की आजादी का मसला है, बहुत बेशुमार मसाइल हैं जिसके जो इस दायरे में आते हैं कि लोगों ने उनको लेबल अच्छा दिया हुआ है, टाइटल अच्छा दिया हुआ है, उन्मान बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके पीछे मकसद वो नहीं है। औरतों की आजादी के पीछे क्या वाकई औरतों को आजादी दिलाना मकसूद है, या अपनी जो नाजायज तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील है उनके अंजाम देने के इरादे हैं? औरतों को कमाने के, धमाने के, तालीम के, मखलूत तालीम के और पर्दे के खिलाफ कर देने के जो कानून है या जो बातें हैं या जो जहनीयत है, इन सारी चीज़ों के अंदर उनकी मखलूत तालीम हो, उनको बेपर्दा करने की बात हो या उनको जॉबों पे आमादा करने वाली बात हो। एक है कि औरत जॉब करना चाहती है ज़रूरत से, तो शरीयत में भी उसकी इजाज़त है, इसकी मिसालें हैं और कुरने उला से मिलती हैं इसकी मिसालें। लेकिन यह है कि मुआशरा ही ऐसा तश्कील दिया जाए कि उसमें मर्द के बराबर बराबर औरत भी जॉब करती हो, करना चाहिए का जो रुझान है और की जो जहनीयत है। एक है कि करना, अगर जरूरत पड़ जाए तो करना कैसा है, एक ये मरहला है, और एक है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये दूसरा मरहला है। तो पहला जो मरहला है शरीयत उसकी इजाजत देती है, लेकिन दूसरा जो मरहला है उसकी हौसला अफजाई कभी नहीं करती। अगर जरूरत पड़ जाए तो करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्या मुआशरे के अंदर ऐसा होना चाहिए कि कमाई धमाई के कामों के अंदर औरत भी मर्द के हमपल्ला हो, बराबर हो? ये जो जहनीयत है इसको परवान चढ़ाया गया गुज़िश्ता 2-3 सदियों के अंदर, कोशिश की गई और आज अपने अबरूज और शबाब पे ये चीज। तो क्या इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ये है कि अपने ऊपर से औरत का बोझ हटाया जाए। शरीयत ने क्या किया था कि औरत का बोझ मर्द के ऊपर डाला था, बीवी का बोझ शौहर के ऊपर है। उस बोझ को कम करने के लिए ये नारा दिया गया, क्या औरतों को आजादी दो, उनको बराबर के हकूक दो, मर्दों के जितने हक हैं वो सब उनको दो। अब सारी दुनिया यही समझ रही है कि वाकईतन हमें आजादी दिलाई गई, ये नहीं समझ रही कि मर्द ने अपने ऊपर से गरज परस्तों ने, मफाद परस्तों ने यह काम किया है कि अपना बोझ हल्का करने के लिए सिन्फ नाजुक के ऊपर एक कवि बोझ डाल दिया है, सिर्फ कवि वाला बोझ डाल दिया। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशुरून, फिर फसाद तो मचाएंगे ये, समझेंगे भी नहीं, बोलेंगे क्या नहनु मुस्लिहून, हम तुम्हारे खैर खा हैं कि तुमको आजादी दिलाना चाह रहे हैं। हर जगह यही किस्सा है। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनु कमा आमना अन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमना सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा कि लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे कि ये बेवकूफ़ ईमान लाए। खबरदार, बेवकूफ यही लोग हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं। उनको समझाया जाता है कि भाई ईमान ऐसे लाओ जैसे लोग लाएं। यहां एक बात जहन में रख लीजिए, अन्नास से मुराद बा इत्तेफाक मुफस्सिरीन इस आयत के अंदर सहाबाए किराम है। मुनाफिकों को जब बोला जाता कि भाई जब तुम ईमान ले आओ इन सहाबा के जैसा, तो उसके जवाब में क्या कहते हैं, قالوا انؤمن كما امن السفهاء. یہ بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں کہ اپنے جان کو نہیں دیکھیں، مال کو نہیں دیکھیں، اولاد کو نہیں دیکھیں، بیویوں کو نہیں دیکھیں، گھر بار کو نہیں دیکھیں، جائیداد کو نہیں دیکھیں، کاروبار کو نہیں دیکھیں، سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیں. یہ تو بیوقوف ہے نا کہ اگر اسلام پہ ان کو، مذہب پہ ان کو لٹانا پڑ رہا ہے تو جان بھی لٹا رہے ہیں، مال بھی لٹا رہے ہیں، اولاد کی پرواہ نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، کاروبار کا نقصان برداشت کر رہے ہیں. کس لیے؟ مذہب کے لیے. بیوقوف ہوئے نا یہ. انؤمن کما آمن السفہاء، ان کے جیسا ایمان لائیں. الا انہم ہم السفہاء. بیوقوف تم صحابہ کو کہتے ہو، بیوقوف یہ صحابہ نہیں ہے، بیوقوف تو تم خود ہو، یہ کہنے والے بیوقوف ہیں. ولیکن لا یعلم، ان کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب ہے ہی ایسی چیز کہ اس پر سب کو قربان کیا جا سکتا ہے. تو جو اس پہ سب کچھ قربان کر رہا ہے وہ عقل مند ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مذہب ہے ہی ایسی چیز، وہ حقیقت سے جڑا ہوا ہے. اور جو اس کے خلاف چل رہا ہے، جو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ مذہب پر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، بیوقوف وہ ہے کہ اس کو انجام کا پتہ نہیں ہے. اس کے سامنے صرف چند روزہ یہاں کی آسانیاں ہیں، یہاں کی دولت ہے، یہاں کے کاروبار ہے، یہاں کی بیوی بچوں کے ساتھ کی جو عافیت کی اور مزے کی، لطف کی زندگی ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ کی، انجوائمنٹ کی، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس 60-70 سال کے بعد میں جو ایک نئی ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی میں اپنی پرسکون زندگی حاصل کرنے کا، اس جہان میں اپنے لیے ایک نفع کی دنیا آباد کرنے کا، اپنے فائدے کی دنیا آباد کرنے کا کوئی اس کا ذہن نہیں ہے. تو بیوقوف یہ ہوا کہ وہ ہوا، بیوقوف تو یہ ہوئے. الا انہم صفہ ولکن لا یعلمون. اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا اعزاز گویا صحابہ کرام کو بخشا گیا ہے کہ کسی کو یہ بولنا ان کی طرح تم بنو تو ظاہر ہے مثال بن گئے نا. مثال بننا ہی ہوتا ہے معیار. اور ایک ہوتا ہے کہ میں بولوں کسی کو، یا کوئی آدمی اپنے بیٹے کو بولے، اور ایک ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو بولے کہ تم اس جیسی مخلوق بنو. بڑی بات ہوتی، بہت بڑی بات. اس لیے بولتے کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہے. یہ بہت بڑا جملہ ہے. اس لیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، یہ کہ صحابہ معیار حق ہے. وہ تنقید نہ تو وہ بہکے ہوئے ہیں، نہ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ خدا نخواستہ گمراہ تھے، نہ آپ کی زندگی کے بعد وصال فرمانے کے بعد وہ گمراہ ہوئے. بعض فرقوں کا عقیدہ ہے کہ صحابہ دو چار کو چھوڑ کے باقی سب مرتد ہو گئے تھے. یہ بعض فرقوں کا عقیدہ ہے. نہیں، خالق دو جہاں جن کے ایمان کو معیار میں پیش کرے. کیا دونوں جہاں کا خالق اتنے کمزور علم والا ہے کہ اس کو 10 سال کے بعد کی زندگی کا پتہ نہیں ہے؟ کہ آج تو میں جن کو مثال میں، معیار میں پیش کر رہا ہوں، 10 سال کے بعد ان کا ایمان نہیں رہنے والا ہے. جن کو مرتد بولتے ہیں معاذ اللہ، بڑی خطرناک چیز ہے. اور نہ ہی ایک تو فرقہ وہ تھا جو ان کو یہ بولتا ہے کہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، دو چار کو چھوڑ کے. دوسرا وہ ہے جو یہ تو نہیں بولتا کہ وہ سب کے سب کافر ہو گئے تھے، یہ بولتا ہے کہ صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں، صحابہ پہ تنقید ہو سکتی. یہ کہنے والوں پہ تنقید کرو نا، یہ جو بولتے ہیں کہ صحابہ پہ تنقید کر سکتے، ان پہ تنقید کر کے دیکھو، پھر ان کے چہرے کے اوپر، ان کی پیشانی کے اوپر کتنے بل پڑ جاتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا. وہ لوگ جس کے وہ فالو کرتے ہیں ان پہ تنقید کر کے دیکھو، پھر ان کو سمجھ میں آئے گا. اگر سب پہ تنقید ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ صحابہ تک پہ ہو سکتی ہے، تو تم اتنے چیبہ جبی کیوں ہو رہے؟ تم اتنے تیبری پہ بل کیوں ڈال رہے؟ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا؟ تمہارا خون اتنا کیوں کھول رہا؟ سمجھنے والی بات ہے نا. تو قصہ وہ نہیں ہے، قصہ یہ ہے کہ تم اپنے کو تو تنقید سے بالا تر سمجھتے ہو، صحابہ کو نہیں. یعنی کچھ گڑبڑ ہے ادھر. تو اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ جو معیار حق ہوتا ہے نا، وہ ایک ترازو ہے. وہ ترازو میں ڈال کر کوئی چیز تولی جاتی ہے، خود ترازو کو تولا نہیں جاتا. یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر صریح سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفاق اعتقادی، نفاق عملی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.